आवाजों की एक आवाज रिख्ता पॉडकास्ट।
हाजरीन आदाब, रिख्ता पॉडकास्ट के इस बेहद खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपके लिए एक बेहद खास गुफ्तगू लेकर आए हैं। ये गुफ्तगू है कुरतलेन हैदर के बारे में। रेख्ता की जानिब से कुरतलेन हैदर की यौमे वफात पर हुई ये गुफ्तगू आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ खास बातें, कुछ खास किस्से शमीम हनफी, सबा शमीम और अजरा नकवी के साथ आज के इस एपिसोड में, जिसका उन्वान है कुरतलेन हैदर एज नेवर नोन बिफोर।
आज एक बहुत खास दिन है, उदास दिन। आज के रोज हमारी प्यारी ऐनी आपा हमसे बिछड़ी थी। ऐनी आपा जिनको सब प्यार से ऐनी आपा कहते हैं, हमारे उर्दू अदब की मारे नास शख्सियत, उनकी इल्मियत पर, उनके नॉवलों पर, उनके फन पर तो बहुत गुफ्तगू होती है। आज हमारा दिल चाहा कि हम उनकी कुछ यादें ताजा करें उन लोगों के साथ जो उनको जाती तौर पर जानती थी, जिनके साथ ऐनी आपा ने बहुत वक्त बिताया है। आज हमारे साथ है हमारे करम फरमा शमीम हनफी साहब और उनकी बेगम सबा शमीम। ये आज उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। ये उनके पड़ोसी भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, अदबी साथी भी रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का प्रोग्राम यादगार रहेगा। शमीम साहब
जी,
आपने बहुत वक्त गुजारा है ऐनी आपा के साथ, जब वो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर थी और उसके बाद जब वो जाकिर बाग में रही और आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा आना जाना था। तो मैं चाहूंगी कि उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी आदात के बारे में कुछ हम गुफ्तगू करें, कुछ बातें शेयर करें।
भाई देखिए, ऐनी आपा के बारे में इतनी यादें उनकी मेरे जहन में महफूज है और उसका सबब यह है कि मैंने जब आग का दरिया उनका नावल पढ़ा था, उस वक्त से एक तरह से उनके इश्क में मुबतला था और वो जमाना भी ऐनी आपा जाहिर की अपने जमाने की नहायत तो कशिश खवातीन में एक गैर मामूली, तो हम सब तालिब इल्म जो थे यूनिवर्सिटी में, जाहिर की ऐनी आपा की तहरीरों के साथ साथ उनकी शख्सियत भी बड़े कहना चाहिए एक वालों शर्दा थे बिल्कुल। अच्छा, इत्तफाक की बात है कि देखिए ऐनी आपा से इतनी दिलचस्पी थी और फिर गुर्बत भी में असर आई उनकी। ये घर जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इस घर में मैं आया 1984 में और ऐनी आपा ने भी इसी सोसाइटी का एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। यहाँ उजार BCCI में वो काम करती थी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, तो यहाँ आके रहने लगी। बल्कि जब पहले दिन आई वो यहाँ तो उन्होंने हम लोगों से ये कहा कि भाई हमारे घर में सफेदी हो रही है तो मैं चंद दिन यहाँ ठहर जाऊँ, तो वो दो तीन दिन हमारे यहाँ ठहरी जिसी छोटे से मकान में।
एक मैं आपकी बात थोड़ा था वो करके, जब मेरे घर ठहरी थी शहीन साहब ने मुझे याद दिला दिया कल में, तो मैं बताऊं उस जमाने में यहाँ नए नए हम लोग भी शिफ्ट हुए थे, बहुत यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, अक्सर बिजली भी चली जाती थी। तो ऐनी आपा रात में आई यहाँ, कहती है मैं खाना यहीं खाऊंगी और आज मैं रहूंगी भी यहीं मेरे यहाँ। तो हमारी बेटियां गजल और सीमी, उन दोनों का कमरा उस साइड में है, वहां रहती थी दोनों। और उस दिन फिर गजल को मैंने अपने कमरे में बुला लिया, हमने कहा ऐनी आपा और सीमी वहां सो जाएंगी। दोनों छोटी छोटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन फिर सीमी और ऐनी आपा एक डबल बेड बिछा था उस पे लेट गई, लाइट थी अपना सो भी गई, रात में लाइट चली गई। हम रात में वॉशरूम के लिए उठे गए, मैंने कहा जरा देखूं ऐनी आपा को कोई परेशानी तो नहीं है। उस वक्त मेरा ख्याल कि 1:30 बज रहा था, मैं गई वहां देखा, धीरे से झांक के देखा कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। वो एक पंखा उनके हाथ में था और सीमी के धीरे धीरे जल रही थी, धीरे धीरे उसके पंखा जल रही थी। मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई।
इसीलिए मैंने कहा कि ये बातें कहीं और सुनने को मिलेंगी नहीं कि ऐनी आपा लोगों को जो पढ़ते हैं उनके इंटरव्यूज में कि वो गुस्से हो जाती थी। मेरा भी कुछ ताल्लुक काफी रहा है उनसे, क्योंकि मेरी खाला सुगरा मेहदी से वो आखिर में बहुत कुर्बत उनको हो गई थी और उनसे मुलाकात होती थी। तो वो एनियापा जो थी एकदम घरेलू खातून, छोटी छोटी घर की चीजों में दिलचस्पी लेना, तो जमीन साहब के उनकी जो एक सब लोग कहते हैं कि वो किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी, तो ऐसा कोई वाकया हो कि जो
देखिए एनियापा का मामला ये था कि उनके बारे में ये तासुर है लोगों का, दो तासुर आम रहे। एक तो ये कि साहब बहुत ही दुखी और बहुत ही उदास रहने वाली खातून है, शादी नहीं की उन्होंने, अकेली रहती थी, तो यानी आपका खुद कह के बहुत हंसती थी, लोग समझते थे बहुत तनाव, बहुत अकेली और बहुत, एक तो ये थी शोहरत। दूसरा ये लोग चिड़चिड़ी बहुत है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, लोगों को कहने की देखिए मेरे बारे में प्रोपेगेंडा लोगों ने कर रखा है, मुझे घर मैं लोगों को घर से निकाल देती हूँ। अच्छा वो एनी आपा वाकई इतनी हसोर खातून थी, और ये समझिए कि लिखते वक्त वाकई किसी और दुनिया में रहती थी
जी।
तो उनकी तहरीरों का मामला तो ये है कि वो ऐसा लगता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड मतवाजी दुनिया उन्होंने बना रखी थी, जब चाहती थी उसमें चली जाती थी और जब चाहती थी आम इंसानों की और हंसी की बातें। अच्छा अजीब जी होता है, यहाँ इसी कमरे में जहाँ वो किरण बैठी हुई है वहां पर एक बार पाकिस्तान से वो आई थी हजरत अब्बास आई यहाँ, तो मैं मेरे घर आई शाम को, तो कहीं और ठहरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अकेली कुछ लोगों को बुला लें कि भाई अगर अब्बास से मुलाकात भी हो जाएगी, तो मैंने एनी आपा से भी कहा कि आ जाइए अगर अब्बास आई नहीं है, एनी आप आए तो अगर अब्बास उन्होंने सिगरेट पी थी और वहाँ बैठी हुई वो वहाँ चौकी इससे बड़ी पीछी हुई थी, अब वो जरा उन्होंने सिगरेट का एक कश दिया और एनी आपा, तो एनी आपा जरा सही बातों से थोड़ा बिगड़ जाती और खासतौर पर इस तरह का उनको उसका एनी आपा ने उनसे पूछा कि आप क्या महसूस कर रही हैं यहाँ, तो अजरा ने कहा कि अभी तो मैं धुंध में हूँ, कहने बात अच्छा अच्छा, वो कहीं फिर दूसरी तरफ देखने लगी, फिर ये कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कुछ पूछे
जी।
तो ये एक अजीब गरीब उनका स्टाइल था बहुत जी। कहना चाहिए कि यहाँ जब पता नहीं इतने वाकयात हैं, एक बार मुशो खाजे आए यहाँ
तो पाकिस्तान से
तो हमने ठहरे हुए मालिक राम साहब के यहाँ थे, मैंने दिन के खाने पर जामिया आने वाले थे, तो मैंने कहा कि आप दिन का खाना हमारे साथ खा लीजिएगा, तो वो यहाँ आए। अब मैंने सोचा कि अकेले कहा मैं उनको, तो मैंने कहा एनियापा को बुला
दी,
तो एनियापा से मैंने दरख्वास्त की जाती, खैर वो आ गई एनियापा, और उसके बाद मशहूर ख्वाजा बैठे हुए यहाँ और एनियापा आई धड़ 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 करती हुई, तेज चलती थी, सेहत अच्छी थी उनकी, दुबली पतली तो खैर होती लेकिन ज्यादा। अब वो आई तो आते ही उन्होंने पहली बार मुशो ख्वाजा, मैंने कहा मुशो ख्वाजा साहब जब से आए हैं आपको याद कर रहे थे, अरे आप तो यहाँ गालबन एक हफ्ते से हैं, तो मैंने कहा कि आज इनकी खैरियत नहीं है, तो मैंने कहा जी हाँ एक हफ्ते से हैं, लेकिन ये कहने तो मुशो ख्वाजा ने कहा जी वो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हाजिर होना चाहता था, लेकिन अरे आप मुझे फोन तो कर सकते थे अब जनाब, लेकिन ये कि साहब वो उसके बाद खैर मैंने बहुत किसी तरीके से संभाला, तो हम वो किसी तरीके से समझिए कि काबू में आए नहीं आ पाओ, उसके बाद फिर ये भूल जाती थी, मासूमियत भी बहुत थी।
एक बार वो जब बहुत पहले की बात है 70s की, जब वो एक बहुत मशहूर सीरियल आ रहा था, हम लोग सब लोग बैठे होते थे उसके एपिसोड के लिए, अच्छा मुहर्रम का भी बहुत एहतराम करती थी वो, तो सात मुहर्रम को वो पढ़ रहा था वो उस दिन का एपिसोड, तो वो ठट्टा मार के बोली सैयद आबिद हुसैन से कि भाई वो असल में मुस्ताफी आपा कहती थी कि देखिए वो उस दिन आ रहा है हमारे हम लोग का जो एपिसोड है, इसको हम एक समाजी जिम्मेदारी समझ के देख लेंगे, आप इजाजत देती है, और वो ठट्टा मार के हंसी, तो वो अपने बहुत, लेकिन एक बात है कि वो बड़ों की इज्जत बहुत करती थी। मैंने उनको अपनी नजरों से जब वो ये अपनी कफे गुलफरोश तरतीब दे रही थी कि जो अपने उन्होंने फोटो एल्बम जैसी किताब छापी है, तो बिल्कुल वो सारे अहमद हुसैन दीवान पे बैठी होती थी और वो उनके कदमों में बैठ जाती थी, उनको दिखाती थी, पूछती थी,
बड़ों की अदाएं उनको अच्छी भी लगती थी।
और ऐसी एक बात और मैंने देखी थी कि वो अपने जो मुलाजिम उनके घर में होते थे उनका बहुत ध्यान
रखती, नहीं बहुत ख्याल, मैंने तो देखा है बहुत ख्याल रखती थी
उसकी, रेहाना की वो उसकी लड़की को तो उन्होंने अपना एक तरीके से वही बना लिया,
नहीं उसकी शादी उन्होंने कितने से की थी,
शादी की उसका कारोबार करवाया पैसे दे करके, क्या रेहानी का नाम है ना,
रेहाना की बेटी,
सलमा की बेटी,
सलमा की बेटी
के साथ बिल्कुल
साई
की तरह,
उसको अपने साथ इंग्लिस्तान ले गई, वो पाकिस्तान ले गई, वो और रिहाना के की वालदा जो थी वो हमारे यहाँ भी खाना पकाती थी,
पका चुकी हमारे यहाँ भी।
तो सलमा थी वो, तो बड़ा ख्याल वो रखती थी। जब एनी आता के इंतकाल से पहले उन्होंने, अब उनका ड्राइवर जो था वो बंगाली, उसके नाम उन्होंने और ये रिहाना के लिए सबके लिए कुछ रकम,
बहुत रकम दी थी।
तो रिहाना के शौहर ने उसी से जूस जूस का कारोबार किया।
अच्छा।
और ये सब एक फ्लैट खरीदा उसने छोटा सा उतारने का, और बहरहाल ये सब रहा। तो वो इन बातों का बहुत ख्याल रखती थी।
पता तुमको अदरा, ये हमारे घर जैसे कभी कोई दावत हो रही है, डिनर पे आई अनी अप्पा, तो मैं खास ख्याल रखती थी कि अनी अप्पा नमक बहुत कम खाती है, बराए नाम डलवाते थे। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। तो मैं टेबल पर जब खाना लगाती थी तो एक सेक्शन सिर्फ एनी आपा का होता था कि जिसमें नमक बराए नाम होता था, किसी किसी चीज में नमक होता ही नहीं था। और जब वो खाना खाने बैठती थी उस पर, तो हमेशा वो वाला खाना लेती थी जिसमें नमक होता था। अच्छा, मैं कहती रह जाती थी एनी आपा उसमें नमक है, कहती कोई बात नहीं मैं खाऊंगी उसी को।
हर तरह की, अच्छा हर तबके के लोगों से अजीब बात यह है कि जैसे कहानियों के बारे में राय लोगों के ऊंचे तबके के लोग किरदारों की बातें करती हैं, ये की अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की, लेकिन एक अहमी आता ने जैसे चांदनी बेगम लिखी या बहुत सी जो उनकी दिलरुबा वगैरह जो वो है नॉवलेट है, तो उसमें आप देखिए कि निचले तबके की खवातीन का जिक्र या मर्दों का जिक्र, अगले जन्म मोहे बिटिया ना की जो है दिलरुबा, इस तरह की मतलब ये कि बहुत उसमें
हमारे घर जब आती थी टावर में रहती थी, बस ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता था इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखा तुमने, थर्ड फ्लोर पे हम रहते हैं, 48 जीने हैं यहाँ पे। आती थी आगे आगे, उनसे कहते थे नहीं आप आगे चलिए, मैं उनके पीछे चल के आती थी। तो वो हर फ्लोर पे रुकती थी, थोड़ी देर रुकती थी, कम से कम 2 मिनट, तो फिर चढ़ी दूसरे पे, उस पे 2 मिनट रुकी, 2 मिनट क्या मतलब थोड़ी देर रुकती थी। तो कहती है सभा, मैं इसलिए नहीं रुक रही हूँ कि मैं थक गई हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि व्यू बहुत खूबसूरत है इधर सामने। असल में वो जाहिर है कि ऊंचा इतना, तुम लोग थक जाती हो, तो एनी आपा तो थक ही जाती थी, लेकिन जाहिर नहीं करती थी कि हम थक गए, कभी नहीं जाहिर करती थी। बिल्कुल नहीं जाहिर करती थी, उसका नाम ये देती थी, शमीम साहब आइए कुछ गीबत की जाए। यहाँ बैठती थी, यहाँ दीवान बिछा था, हम लोग इधर चारों तरफ बैठे हुए, शमीम साहब चलिए गीबत की जाए थोड़ी देर।
बाद में गया था विद्यार्थी प्रोग्राम, उसी से हम लोगों ने टर्म बना ली थी कहनी आप विद्यार्थी प्रोग्राम।
बस ये बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, और कभी अगर कोई आदमी उनसे फ्री होना चाहे
बहुत
नाराज हो जाती थी। और लेकिन उनके घर में हमने देखा, जैसे भैया उनके आते चांदनी बेगम में, इसमें गर्दिश रंगे, उसमें बाकायदा वो किरदार है, और उनका सैलाब नूर जो कह रहे थे, उनसे अकीदत थी उनको, और जाहिर है उनसे बहुत सी करामतें वाबस्ता करती थी। अच्छा, वो आते थे, वो इनके यहाँ चूंकि ज्यादा होंगे तो उनकी लगती नहीं थी, देख करके घर के वो
50
भैया कहलाते थे, और यहाँ आते थे। आई नहीं आता क्या मेरी मुलाकात थी, तो मुझसे भी उनका मिलना जुलना हो गया, तो मुझे भी बुलाते थे वो। लेकिन एक आध बार ऐसा होगा कि एक मरतबा मुझे बहुत शदीद नजला था, सर्दियाँ थी बड़े कड़ाके की, और वो अच्छा वो आते तो तनहा तो होते नहीं, तो 10 आदमी और अच्छा एक से एक अजीब अजीब किस्म का मुसलमान, लुंगी बांधे हुए, ये लंबी दाढ़ियाँ, चिकट्टी टोपी लगाए। अच्छा उसके साथ एक सरदार भी, वो खाना पकाते थे, जरा वो आ रहे हैं,
पूरा घर भरा रहता था,
उनके खानदान भाई थे जाफरी साहब, वो आते थे साथ में, तो ये सब एक भीड़ रहती है एनी आपा की। और एनी आपा भी एक तरफ तो मशहूर था कि नाजुक मिजाज है, घर वर बहुत संभाल के रखती है अपना, और वहां मालूम है कि ये तहमत बांधे हुए लोग इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, और एनी आपा को
जरा
बराबर नागवाड़ी था कि दिन भर वो सोफे पर लेटे हुए हुक्का पीते रहे।
एनियाबा को एनिया कहते थे,
एनियाबाजी। और एनियाबा उनके उनका हुक्का बर्दाश्त करती थी, उनके हुक्के की तंबाकू की महक आती रहती है, दिन भर वो बर्दाश्त करती थी,
हमेशा सर ढके रहती थी
और उनके सामने न सिर्फ सर रखती थी साहब। इतना एक बार ऐसा था कि उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब आप आ जाइए। एनियाबा ने कहा, मैंने कहा एनियाबा मुझे बहुत शदीद नजरा है, मैं इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं निकलने की। थोड़ी देर बाद फिर एनियाबा, अरे भाई भैया कह रहे हैं। अच्छा भैया कह रहे हैं तो गोया कि किस तरह का
आपको आना ही है,
आना ही। मैंने कहा देखिए एनियाबा, मेरी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त वाकई हिम्मत नहीं दे रही। थोड़ी देर बाद उनके यहाँ से एक साहब चले आए, साहब उन्होंने भेजा है एनियाबा ने, और उन्होंने कहा है वो भैया बुला रहे हैं आपको, और मैं चला गया। अच्छा मैंने गाउन और टोपी उन्हें लगाई और ऐसे चला गया इसी आनंद में। अब भैया जाने वाले थे उसी वक्त, थोड़ी देर बैठे रहे तो उनके वक्त हो जब स्टेशन जाने का, तो ये हुआ कि भैया जाने वाले थे, वो चाहते थे कि आपसे मुलाकात हो जाए। और ये अब जरा भैया ने कहा कि साहब चलिए, समीर साहब ऐसे ही बोलते थे, शीम खाफून का दोस्त नहीं था, समीर साहब चले जरा आप भी स्टेशन हो आए। अब जरा मैंने कहा भैया अरे भैया कह रहे हैं गोया कि आप चलिए,
गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, दिल तो ये चाहता है कि आपसे पूछते रहे, बताते रहे, सुनते रहे। लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया शमीमा नफी साहब और एनियाबा की। बिल्कुल वो बातें जो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते होंगे, उन पर रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।
सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।